समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो घड़ी 4:30 बज चुकी है और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के संस्करण में मैं हुआ तहर सईद आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून अथर। अथर, इट्स 2nd ऑफ जनवरी टुडे। द न्यू ईयर हैज ऑलरेडी बिगन फॉर विच वी वर वेटिंग, अ चांस टू स्टार्ट फ्रेश, अ चांस टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द फ्यूचर।
बिल्कुल,
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंडेवर्स, विशिंग यू द वेरी बेस्ट इन ऑल योर परस्यूज एंड एज वी एंटर अ फ्रेश स्टार्ट वी ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड to some upcoming events of great importance. The Mahakumbh is coming and the Republic Day is also there, for which the preparations have already started. Akashwani will be with you in every step to get the latest on how we are getting prepared for these two grand events of not only national importance but global importance as well.
Bilkul theek kaha Anuja aapne.
But right now let's begin with news making headlines at this hour.
Pradhanmantri Narendra Modi ne durdaraz aur maovad prabhavit kshetron mein chahumukhi vikas sunishchit karne ke liye Maharashtra sarkar ke prayason ki सराहना की।
मूवमेंट ऑफ सेवरल ट्रेन्स अफेक्टेड ड्यू टू लो विजिबिलिटी कॉज्ड बाय डेंस फॉग इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ द कंट्री।
भारत ने भूकंप प्रभावित वानुआतू को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता की घोषणा की।
एटलीस्ट 10 पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रेन इन मॉन्टीनेग्रो शूटिंग स्प्री, अनदर मैस शूटिंग इन यूएस लीव्स 11 इंजर्ड आउटसाइड अ नाइट क्लब इन न्यूयॉर्क क्वींस।
गणतंत्र दिवस परेड 2025 और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री शुरू।
एंड इन हॉकी इंडिया लीग, सूरमा हॉकी क्लब टू क्लैश विद यूपी रुद्रास इन राउरकेला। And yes, Athar, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about a rather weird sort of topic today. It's World Introvert Day. Yes, World Introvert Day, observed on January 2nd every year, is a special occasion dedicated to celebrating the unique qualities of introverts. This day not only honors their quiet strength and introspective nature, but also raises awareness about the significant role introverts play in society. The observance helps highlight the often overlooked traits of introverts, such as creativity, deep thinking, and the ability to work independently. As the world becomes more extrovert-oriented, World Introvert Day encourages a shift in perspective, allowing people to appreciate the quieter, more thoughtful contributions that introverts make in all areas of our life.
बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुजा, आज विश्व अंतर्मुखी दिवस है। अनुजा, कई बार हम लोगों को खामोश देखते हैं, अपने आप में मग्न देखते हैं, अपने आप से बातें करते महसूस करते हैं, लोगों से उनका मेल जोल कम होता है, मेल मिलाप कम होता है, कई बार वो लोगों से मिलने से कतराते तक हैं, यानी समाज में दोस्तों से हम उन्हें कटा हुआ सा महसूस करते हैं, उनके दोस्त भी कम होते हैं
जी।
ऐसे लोगों के लिए यदि एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो होगा, जैसे कि आपने कहा, इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के मालिक चिड़चिड़े हों जरूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कैसे व्यक्तित्व वाले लोग बड़े गुणी होते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम भी करते हैं, यानी अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपनी ऊर्जा को आंतरिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। वे अक्सर भीड़ या सामाजिक गतिविधियों में थकान महसूस करते हैं या फिर विचलित सा महसूस करते हैं और अकेले में समय गुजारना ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं, ज्यादा उसमें उनको अच्छा लगता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब शर्मीला होना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अनुजा इसका अर्थ यह है कि आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत अंतराल के साथ अपनी ऊर्जा को वो पुनः प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्व अंतर्मुखी दिवस के लिए 2 जनवरी ही को क्यों चुना गया। दरअसल अनुजा, इसके पीछे एक कारण है और वो ये है कि ये दिन नए साल की शुरुआत के ठीक बाद आता है, जब लोग अक्सर सामाजिक उत्सवों और पार्टियों में व्यस्त होते हैं। ऐसे में अंतर्मुखी लोग खुद को थका हुआ सा महसूस करते हैं और शांत और अकेले समय की आवश्यकता महसूस करते हैं, और 2 जनवरी का दिन उन्हें ये अवसर देता है कि वो खुद के लिए समय निकालें और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो किसी पार्क या कहीं और आराम की जगह जाना पसंद करें। और इसमें घर का एक खास कमरा भी हो सकता है, समुद्र का किनारा भी हो सकता है।
लाउड सेलिब्रेशन ऑफ द 31st एंड 1st, दे नीड अ टाइम, क्वाइट टाइम फॉर देमसेल्व्स।
मैं कहता हूं कि सबके लिए अगर नदी का शांत किनारा हो या फिर घर का एक खास कोना हो, उसमें धीमी गति से अगर संगीत चल रहा हो, आप हो, आपकी चाय की प्याली हो, तो कितनी शानदार वो बात हो सकती है। और उसमें जो आपकी सोच है वो जो उड़ान भरती है वो मेरे ख्याल से कहीं और जगह नहीं मिल सकती।
राइट अथर, इनफैक्ट क्वाइट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड्स, आई वुड से। यू सी थिंग्स, यू कीप क्वाइट अबाउट देम एंड यू अंडरस्टैंड, एंड इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड।
बिल्कुल।
वी मस्ट अप्रिशिएट द रिचनेस ऑफ एन इंट्रोवर्ट्स इनर वर्ल्ड, सजेस्टिंग दैट बीइंग अलोन इज नॉट अ नेगेटिव बट इट इज अ स्पेस फॉर डीप थॉट एंड क्रिएटिविटी।
बिल्कुल सही कहा अनुजा आपने। अल्बर्ट आइंस्टीन अब तक के हम मानते हैं सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे वो याद आ रहा है, कि शांत जीवन की एक रस्ता और एकांत रचनात्मकता दिमाग को उत्तेजित करती है, और ये कथन दर्शाता है कि वे शांति और खामोशी को कितना महत्व देते थे। आइंस्टीन ने 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हासिल किया। उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसने ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को ही बदल दिया। तो हमें भी अंतर्मुखी लोगों के बारे में अपनी सोच को अनुजा बदलना होगा।
राइट, एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हिज फेमस कोट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, दैट द मोनोटोनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिम्युलेट्स द क्रिएटिव माइंड, एंड ही टोटली एम्ब्रेस्ड हिज इंट्रोवर्टेडनेस। एंड वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2011 बाय क्रिस्टीना स्मिथ, अ सेल्फ आइडेंटिफाइड इंट्रोवर्ट हु सॉट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रोवर्ट्स टू फील सीन एंड अंडरस्टूड फॉलोइंग द नॉइज एंड सोशल प्रेशर्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। जनवरी 2nd वॉज चोजन एज अ डे फॉर इंट्रोवर्ट्स, एज यू जस्ट मेंशनड अ लिटिल टाइम बैक, टू रिफ्लेक्ट, टू रिचार्ज एंड अप्रिशिएट देयर यूनिक ट्रेट्स। द डे ऑल्सो सर्व्स एज अ चैलेंज टू द सोसाइटल बायस दैट ऑफन वैल्यूज एक्सट्रोवर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक sociability and outward charisma over the quiet and contemplative nature of introverts. It is a call to recognize the vital contributions introverts make in fields like science, art, literature and also business.
बिल्कुल सही कहा आपने। बहरहाल अनुजा, चाहे आत्मनिरीक्षण के माध्यम से या फिर सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से, विश्व अंतर्मुखी दिवस उन विविध तरीकों का सम्मान करने का निमंत्रण है जो लोग दुनिया में योगदान करते हैं, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं जो हर व्यक्तित्व प्रकार के महत्व को समझती है। तो अंत में हमारी चर्चा का सार यही निकलता है अनुजा, कि जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। लिहाजा कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन साथ में रचनात्मकता हो तो ये सोने पे सुहागा है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ खास है उनके पास। अनुजा,
यस, एंड लेट्स फर्स्ट गो टू द ब्यूटिफुल सीरीन लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, वेयर इन द रग्ड एंड सीरीन लैंडस्केप वेयर द विंड्स सिंग एंशियंट हिम्स एंड द माउंटेन स्टैंड एज साइलेंट विटनेसेस टू द पैसेज ऑफ टाइम, अ न्यू नैरेटिव ऑफ रेजिलियंस इज बीइंग रिटन। दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइवल बट अबाउट द ट्रायंफ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इनोवेशन एंड द अनडाइंग होप for a better tomorrow.
This winter, Ladakh saw a transformative milestone with the creation of an artificial snowmaking machine in Kargil. Spearheaded by the Ladakh Snow Ski and Snowboard Association under the visionary leadership of Sadiq Ali and his team, the machine, built with locally available components, can produce 1 inch of snow over a 15x5 feet area within an hour. It promises to be a game changer for the region, addressing the challenges posed by unpredictable snowfall. Ladakh's growing winter tourism, crucial for the local economy, has often been hindered by inconsistent snow cover. With this technology, skiing courses can be maintained and tourists can be assured of winter wonderland experience. Beyond tourism, this breakthrough has significant implication for water management in Ladakh. The artificial snow can be harvested and stored, offering a sustainable solution to water scarcity in the region. In land where water resources are often frozen or limited, this could be a beacon of hope for farmers and communities dependent on snowmelt for irrigation. During an exclusive interview with Parikrama, Sadiq Ali shared, "This project isn't just about snow, it is about securing a future for Ladakh. By merging tradition with innovation, we aim to create opportunities and solve pressing challenges faced by our people." The Ladakh Snow Ski and Snowboard Association has called for support from the government, urging investment to scale up this initiative. Their vision is to transform Ladakh into a global hub for winter sports, drawing athletes and tourists from across the globe while creating jobs and boosting the local economy. As Ladakh navigates the complexity of climate change, innovations like these showcase the region's resilience. They reflect the spirit of a people who, despite challenges, continues to find ways to preserve their culture, protect their environment, and create a brighter future. For Parikrama, this is Anand Ali from Kargil, Union Territory of Ladakh.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में भारत की सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक गौरव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवसर रहा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अबुधाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन भारत के सांस्कृतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू शिला मंदिर है और इसका निर्माण प्राचीन हिंदू स्थापत्य सिद्धांतों शिल्प शास्त्र के अनुसार हुआ है। एक रिपोर्ट।
भारत ने 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अपनी सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार के प्रयासों से असम में मोइदम को भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक महत्व को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र के उद्घाटन ने महाभारत और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों को जीवंत किया। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर भारत को दर्शाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार और 10 लाख नौकरियों का सृजन किया। भारत ने 2024 में असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और पारकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर अपनी भाषाई विविधता को भी मजबूत किया। भारत 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले 2025 के लिए भी तैयार है। यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक होने का अनुमान है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अनुजा, जब भी हम कपड़ों का चुनाव करते हैं तो न सिर्फ हम उसका रंग देखते हैं, उसका फैब्रिक देखते हैं, बल्कि साथ में उसके डिजाइन को भी हम महत्व देते हैं। लेकिन
डिजाइन साथ साथ हम तो कंफर्ट को भी देखते हैं।
सबसे बढ़कर हम आराम को तरजीह देते हैं। हाँ। और आराम सबसे बेहतर यदि किसी फैब्रिक में मिल सकता है वो निसंदेह खादी है।
Absolutely.
और खादी गांधी जी के पसंदीदा है। और अगर हम वर्तमान में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार खादी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और तमाम लोगों में इसके पीछे जो अब हम देख रहे हैं दिलचस्पी बढ़ी है।
राइट, एंड इफ यू कीप ऑन गोइंग टू द खादी स्टॉल्स नियर बाय योर एरिया दीज डेज, दे आर कमिंग अप विथ मल्टीपल फैशन ओरिएंटेड थिंग्स एंड वेरी नाइस थिंग्स विच यू कैन रियली यू विल बी टेम्प्टेड टू बाय।
बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप कपड़े खरीदने जाओ तो खादी को तरजीह देने की कोशिश करो।
जी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडर्न टूल्स टू द विलेज आर्टिजन्स इन तेलंगाना टुडे एंड द बेनिफिशियरीज एक्सप्रेस happiness as they received training through which they honed their skills and were able to earn a better living. We have a report on this from our correspondent.
Khadi and Village Industries Commission through the Gramodyog Vikas Yojana has distributed tools to rural artisans in Hyderabad today. Over 100 artisans, mainly rural potters and 25 youth who received training for mobile phone repairs have received modern electric tools worth about 25 to 35,000 rupees, totally free of cost. When I interacted with Jangamma, a middle-aged woman potter from Rangareddy district who received two-day training at National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, has expressed her immense happiness, stating that the electric potter wheel will reduce physical burden on them and also the training imparted skills to make modern pottery articles. While distributing the tools, KVSA Chairman Manoj Kumar said, "The rural artisans have become employment providers due to the measures taken by the government like Vocal for Local and others during the past 10 years. Lakshmi, Parikrama, Hyderabad."
आकाशवाणी समाचार अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में आपके लिए वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। श्रोताओ, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर एक नजर डालेंगे।
केंद्र सरकार ने 2024 में डिजिटल प्रणाली को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की है। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, सरकारी सेवाओं के लिए उमंग, स्वास्थ्य सेवा के लिए ई संजीवनी और न्याय के लिए ई कोर्ट्स की शुरुआत की गई। इसके अलावा यूपीआई ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत कर देश के भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है। पिछले साल जून तक यूपीआई के माध्यम से 24,000 करोड़ से अधिक के वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान की गई। वहीं साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने साइबर खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा डिजी लॉकर के माध्यम से भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करने में मदद मिली है और एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को सक्षम बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब मौसम। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज भीषण ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसी प्रकार की स्थिति अगले 2-3 दिनों तक सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी रह सकती है। अनुजा,
and flights may be delayed or cancelled, so before leaving for the station or the airport, please be updated on what's the status of your flights and trains are. And talking to the media, the IMD scientist Soma Sen Roy said that heavy rainfall or heavy snowfall as well as thunderstorm activity over Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh is expected over the weekend.
Currently, there is a western disturbance. It is over Jammu and adjoining North Pakistan. This western disturbance is likely to give isolated snowfall activity, mainly over the western Himalayan region, today and tomorrow.
And in the business news for the day, benchmark domestic equity indices ended with strong gains driven by surge in auto, IT and financial stocks. The 30 share index at Bombay Stock Exchange Sensex soared 1,436 points to close at 79,944. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 rose 446 points to settle at 24,189. Both the indices ended up by over 1.8% each. In the global crude market, Brent crude was trading 1.25% up at $75.57 per barrel, and WTI crude also advanced 1.28% to trade at $72.64 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading up at 77,560 rupees per 10 grams, while silver 999 fine is also trading up at 88,850 per kilogram when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज रात 8:15 सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्राज के साथ होगा। टूर्नामेंट में कल हुए मुकाबले में शिराची राल बंगाल टाइगर्स ने टीम गुनासिका को 2-1 से मात दी।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
2 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी ने पूर्वी बंगाल में दंगा पीड़ित क्षेत्रों में शांति मार्च शुरू किया था।
उन्नीस में भारत में अनिश्चितता का अंधियारा छाया हुआ था, क्योंकि राजनीतिक रूप से कुछ भी निश्चित नहीं था। जब बंगाल से विचलित करने वाले समाचार आने लगे तो गांधी ने अपनी सभी योजनाएं रद्द कर दी और दंगा पीड़ित क्षेत्रों में जाने का फैसला किया। पूर्वी बंगाल के नोआखाली में उन्होंने देखा कि देशवासियों के दिलों में किस कदर भय, नफरत और हिंसा समा गई है।
वे गाँव गाँव गए और राजनीतिक धरातल से परे जाकर मानवता के लिए शांति के मुद्दे उठाए। उन्होंने निवेदन किया कि सभी दलों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि सभ्य जीवन की मर्यादा तार तार न होने पाए। गांधी जी की उपस्थिति ने पूर्वी बंगाल के गांव में अच्छा काम किया और लोगों के बीच तनाव और गुस्से को शांत किया।
आज हम स्वाधीनता सेनानी हरे कृष्ण महताब को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 जनवरी 1987 को हुई थी। वे उत्कल केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। महताब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार जेल गए।
हरे कृष्ण महताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के बालेश्वर जिले के अगरपाड़ा गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 1921 में स्नातक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे 1930 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उसी साल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। कैद में उन्होंने वाल्मीकि रामायण का ओडिया में अनुवाद किया। उन्होंने भगवद गीता को ओडिया में काव्य रूप में लिखा। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 1932 में जेल भेजा गया।
जेल से रिहा होने पर महताब ने कुछ समय महात्मा गांधी के साथ बारडोली में बिताया। उन्होंने गांधी जी के विचारों और दर्शन की तरफदारी में रचना पत्रिका प्रकाशित की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वे 2.5 साल तक अहमदनगर किले की जेल में बंद रहे और मई 1945 में रिहा किए गए।
महताब ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे अप्रैल 1946 से मई 1950 तक इस पद पर रहे। वे 1950 से 1952 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और बाद में 1955 से 1956 तक बंबई के राज्यपाल का पद संभाला। 1956 में राज्यपाल का पद छोड़कर वे पुनः ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और 1956 से 1960 तक इस जिम्मेदारी को निभाया।
मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान महताब ने रियासतों के विलय और एकीकरण, कटक से हटाकर भुवनेश्वर को राजधानी बनाने और बहुद्देशीय हीराकुंड बांध परियोजना को स्वीकृति और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1962 में अंगुल से लोकसभा के लिए चुने गए और जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन।
वंदे भारत केसरी ಇಂದ್ರ ಸುಮತೆ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನಿಧೆ ವಂದೇ ಹೃತ್ತಡ ಪದ್ಮ ಮಧ್ಯ ಸುಲಸಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ।
हम महान स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक मनत्तू पद्मनाभन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1878 को केरल के कोट्टायम में हुआ था। पद्मनाभन को दूरदृष्टा सुधारक माना जाता है, जिन्होंने नायर समुदाय को नायर सर्विस सोसाइटी के तहत संगठित किया।
पद्मनाभन ने सामाजिक असमानता से भी संघर्ष किया। 1924 में उन्होंने वायकॉम सत्याग्रह में भाग लिया तथा कथित निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग करते हुए वे 1931 में गुरुवयूर सत्याग्रह में शामिल हुए। उन्होंने जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए अपना पारिवारिक मंदिर सबके लिए खोल दिया।
25 मई 1947 को पद्मनाभन ने अलप्पुझा के मुतुकुलम में प्रसिद्ध मुतुकुलम भाषण दिया। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने पर 14 जुलाई 1947 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता के बाद पद्मनाभन राजनीति में आ गए और लोगों की सेवा करते रहे। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। और इस क्रम में सबसे पहले हम याद करेंगे अनुजा
विट्ठल रामजी शिंदे को। इट इज हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे। ही वाज अ रिवर्ड सोशल रिफॉर्मर, रिसर्चर, राइटर एंड प्रोपोनेंट ऑफ एंटी अनटचेबिलिटी एक्टिविज्म एंड रिलीजियस यूनिटी इन महाराष्ट्र। ही प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल अमंग लिबरल थिंकर्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स बिफोर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। शिंदे इज रिकग्नाइज फॉर हिज टायरलेस एफर्ट्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ of untouchability and advocating for support and education for untouchables, including Dalits.
आज पुण्यतिथि है अन्ना राम सुदामा की. वे राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे. सुदामा ने राजस्थानी और हिंदी में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य और अन्य विधाओं में 25 पुस्तकें लिखी. उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया. कुल मिलाकर 11 पुरस्कार उनको हासिल हुए. उनकी विभिन्न रचनाओं की अगर बात करें तो उनकी सबसे प्रमुख रचना रही है मेवे रा रुख, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला.
And today we also pay tribute to Ramakant Vitthal Acharekar on his death anniversary, who was an Indian cricket coach from Mumbai and was most famous for coaching young cricketers at Shivaji Park in Dadar, Mumbai, most notably सचिन तेंदुलकर.
और इसके अलावा बात करें तो विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, समीर दिघे, बिल्कुल, और बलविंदर सिंह संधु के भी वो कोच रहे.
राइट, ही हैड आल्सो बीन अ सेलेक्टर फॉर द मुंबई क्रिकेट टीम. ही आल्सो वन द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1990 एंड पद्मश्री इन 2010. एंड ऑफ कोर्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ इन कोचिंग टू रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट.
बिल्कुल ठीक कहा आपने. रमाकांत आचरेकर कहते थे कि प्रैक्टिस कम करो, मैच ज्यादा खेलो, क्योंकि मैच खेलने से किसी भी खिलाड़ी के खेल में प्रतिस्पर्धा का भाव आता है, यानी वो उसको आगे बढ़ने का एक माहौल मिलता है.
राइट, एंड द नेक्स्ट पर्सनालिटी वी पे ट्रिब्यूट टू टुडे इज We are remembering Dr. Vasant Govarikar, the noted scientist and the man behind the Indian monsoon model, the first scientist to develop the first indigenous weather forecasting model that predicted monsoon correctly. He, along with senior scientist Vikram Sarabhai, laid the foundation stone for India's space technology and space programs, culminating in many important milestones. India's first launch vehicle, SLV-3, made its triumphant success during Govarikar's tenure as director of Vikram Sarabhai Space Center.
आज ही पुण्यतिथि राजेंद्र शाह की. वे गुजराती भाषा के साहित्यकार थे. उन्हें 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनका पहला कविता संग्रह ध्वनि है. और इससे पहले संग्रह नहीं, गुजराती साहित्य की दुनिया में उन्हें बेहद लोकप्रियता दिलाई. उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. और अनुजा आज ही पुण्यतिथि है जाने माने शायर अनवर जलालपुरी की. वो यश भारती से सम्मानित उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे. उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथ श्रीमद भागवत गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद किया था. उर्दू दुनिया की नामचीन हस्तियों में शुमार अनवर जलालपुरी मुशायरों की निजामत के बादशाह थे. मुशायरों की जान माने जाने वाले अनवर जलालपुरी ने राह रौ से रहनुमा तक उर्दू शायरी में गीतांजलि तथा भगवत गीता के उर्दू संस्करण, उर्दू शायरी में गीता पुस्तकें लिखी, जिन्हें बेहद सराह गया. उन्होंने अकबर द ग्रेट धारावाहिक के संवाद भी लिखे. अनवर जलालपुरी का अहम कार्य गीता को उर्दू शायरी में ढालने का है. गीता के अनुजा 701 श्लोकों को उन्होंने 1761 उर्दू के शेरों में बखान उनका किया है. अनवर जलालपुरी के लिए दो शेर मैं उनके अर्ज करना चाहता हूं. अर्ज करता हूं कि मैं हर बेजान हर्फ लफ्ज को गोया बनाता हूं कि अपने फन से पत्थर को भी आईना बनाता हूं. और एक शेर और उनका देखें कि न जाने क्यों अधूरी ही मुझे तस्वीर जचती है, मैं कागज हाथ में लेकर फकत चेहरा बनाता हूं.
Yes, he received the Padma Shri also posthumously from the President of India. And today, coming to the birth anniversaries, we pay tribute to Sukumar Sen. With the Indian Constitution being formally adopted and finally coming into effect on January 26, 1950, the first Republic Day, the adoption of the Constitution meant that the national elections needed to be conducted to elect a democratically elected parliament and government. And it was the Indian civil servant Sukumar Sen who was appointed as India's first chief election commissioner. The challenge that Sen faced was possibly the biggest ever faced by an Indian bureaucrat. India's first prime minister expressed a desire to see elections conducted next spring, very early, leaving the chief election commissioner with less than a year to prepare for everything. Just imagine, no voter list, no identity cards, no ballot papers, ballot boxes or party symbols. Everything had to be done from the scratch. There was no polling infrastructure, polling stations, polling staff, etc. And this was done in a very perfect way by Sukumar Sen.
और अनुजा आज ही जन्मदिन है प्रसिद्ध तैराक बुला चौधरी का. उन्होंने पांचों महाद्वीप के सातों समुद्र तैर कर पार किए हैं. बुला चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें जल परी की उपाधि भी दी गई है और 2003 में उन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है. और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए अतहर सईद और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.
नमस्कार.